Om Shanti. It is July 2025. आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। 2 लिंक दिए हैं, एक गूगल मीट का और एक यूट्यूब लाइव का। जैसे ही आपको सुविधा हो, जिस भी लिंक से आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो के वीडियो में जो आप देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करो, पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख नहीं देना। दैवी गुण धारण करने का मतलब है कि हमने सबको सुख देना है, हमने किसी को भी दुख नहीं देना। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से धारण करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं और किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि दुख देंगे तो नेचुरली हमें दुख लेना पड़ेगा, दुख देंगे तो दुख लेना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी तरह हमें अपनी बुद्धि में ध्यान रखना, हमने किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना। तुम्हें कोई ऐसी आसुरी एक्टिविटी नहीं करनी। आसुरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण किसी को दुख पहुंचे, जिसके कारण किसी को दुख पहुंचे, उस एक्टिविटी को नहीं करना। जिसके कारण किसी को दुख पहुंचे उस एक्टिविटी को नहीं करना। क्योंकि भगवान आए हैं, परमात्मा आकर हमें पढ़ा रहे हैं, अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है। ये बात हमारी बुद्धि में अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। ये बात हमें स्पष्ट होगी तो नेचुरल हम कभी भी किसी को भी दुख देने की सोचेंगे भी नहीं। प्रश्न, कौन से आखिरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते? कौन से आखिरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते? ऐसे ऐसे आखिरी गुण हमारे श्रृंगार को बिगाड़ दे जो सबके सामने दिखाई देते हैं। आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना, ये आखिरी गुण है जो तुम्हारे, हाँ जी, धम चक्कर मचाना, घर में तूफान खड़ा कर देना, तो कोई ना कोई तो क्रोध करेगा, लड़ाई का कोई कारण होता है? कहीं भी लड़ाई का कोई कारण होता है? कोई कारण नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हाँ, लड़ना झगड़ना, छोटी सी बात होती है, दो बच्चे बैठे हैं, उसने हाथ लगा दिया, बस हो गया झगड़ा शुरू। उसने एक बार हाथ लगाया, उसने दो बार लगा दिया। किसी की भी छोटी छोटी सी घर के, नहीं मतलब पार्ट तो बजा रहे हैं, पार्ट की शुरुआत को यदि हम कहीं भी देखें, कितनी भी लड़ाइयां हम स्टेज में आ गए हैं, सब जानते हैं, बस एक छोटी सी गलती होती है, इग्नोरेबल होती है। ऐसा नहीं होता उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, परंतु इग्नोर ना करके अब किसी ने हाथ लगा दिया तो उसको आप कुछ मत कहो, अरे आप कुछ नहीं कहेंगे। बच्चे बैठे हुए हैं आपस में, हम देखते हैं स्कूल के अंदर, देखा सारी जिंदगी कि बस बैठे हुए हैं, उसने ऐसे कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, उसने थोड़ा और तेज से कर दिया। वो चाहता है कि ये मेरे साथ कुछ शरारत करे, वो चाहता है कि हमारी जो है ना कोई बात, मतलब कोई झगड़े की बात ही नहीं है, बस उसने, इसने मेरे को तीन बार ऐसे किया, मैंने इसको थप्पड़ लगा दिया। अब जब तक उसकी सहन शक्ति थी उसने सहन किया, उसके बाद उसने उसको थप्पड़ लगा दिया, उसने थप्पड़ लगा दिया तो उसने दो थप्पड़ लगाए, उसने चार कर दिए, मैं बड़ा और वो बड़ा। तो वो शेर जब इकट्ठे हो जाए फिर तो यही होता है, घर में दो शेर हो जाते, वो कहता मैं इससे कम थोड़ा, वो कहता मैं इससे कम थोड़ा। यदि दोनों में से एक भी समझदार हो वो शेर ना बने, शेरनी बन जाए तो हो जाए काम, ये दम चक्कर मच जाता है। फिर एक इंच जगह के ऊपर भाई भाई को मार डालता है, ये धम चक्कर है। मतलब झगड़ा जब क्रोध होता है, क्रोध सबसे पहले अकल का दरवाजा बंद करता है। एक का अकल का दरवाजा बंद हुआ तो जो भी वहां आएगा वो उसका भी अकल का दरवाजा बंद होता जाएगा। वो वातावरण में मास्टर, हाँ जी, जवाब तो नहीं देता। प्रॉब्लम क्या है भाई कि जहाँ वो गालियां निकाल रहा है, वो मिसबिहेव कर रहा है, वो जो किसी दूसरे का हक मार रहा है, अब वो सहन नहीं कर सकता। एक लिमिट है हर एक की, क्योंकि सबने अपने अपने लिमिट स्विच लगाए हुए हैं। इतने बड़े संत महात्मा कोई भी नहीं बन गया है जिसने अपना लिमिट स्विच हटाया हो। जब कृष्ण का लिमिट स्विच हटा हुआ है, लगा हुआ है, बाकी और कौन लगाएगा? राम का भी लिमिट स्विच लगा हुआ था तभी उसने मतलब जो है ना युद्ध किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया तो उन्होंने देखा कि भी अति हो गई है, अब तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था तो उसको भी दिखाया कि समुद्र ने बाण उठाया कि मैं समुद्र तुम्हें सुखा देता हूँ। समुद्र देवता भी हाथ जोड़ करके आगे आ गया, जे ले जी पुल बना लो आपने। मतलब के नहीं कहे कि भय बिन प्रीत ना हो, तो एक लिमिट होती है और हर एक ने अपनी लिमिट लगाई हुई है। संत उसे कहते हैं, परमात्मा का बाबा का बच्चा उसे कहते हैं जिसने अपनी सारी लिमिट हटा दी, कोई लिमिट नहीं। वो मेरा मर्डर करता है कर दे, मेरा सिर फोड़ता है फोड़ दे, मेरे को रोजाना टॉर्चर करता है, सवेरे भी करता है, शाम को भी करता है, दोपहर को भी करता है, हर टाइम मेरे को वो टॉर्चर कर रहा है। तो एक बात उसकी बुद्धि में हो, ये मुझे उतना टॉर्चर कर रहा है जितना मैंने इसको किया हुआ है, जैसे ही हमारा टॉर्चर का हिसाब बराबर होगा ये मुझे टॉर्चर करना बंद कर। अब इतना बड़ा संत सिवाय शिव बाबा के और कोई बना नहीं सकता, उसके बाद भी बनेगा कोई जिसका पार्ट हो। यह धम चक्र, बस फिर तो एक बार एक का दरवाजा अकल का बंद हुआ, दूसरे का भी दरवाजा कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। बस हद थी तेरी, मैंने सहन कर ली, अब मैं तेरे को बताता। उसके बाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बम गोले और जो मर्जी देश के देश बर्बाद कर। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध चला, एक लिमिट है ना। अब ईरान और इनका युद्ध चल रहा है, जो भी देश है, आखिर तू कब तक सहन करेगा कोई? कहेगा अच्छा मरता क्या ना करता। चलो तो यही होगा, मरता क्या ना करता, बड़े जुल्म किए करेंगे या कोई भी छोटा हो तो कोई भी हो, बड़ा छोटे का कोई मतलब नहीं है। एक जुल्म करेगा हद के बाद उसे अपना जवाब मिलेगा, और वो मिलना मीन्स तब धम चक्कर होता है जब आमने सामने दोनों अब अकल का दरवाजा बंद कर चुके हैं। अब दोनों को नहीं पता कि अब हम क्या करेंगे, दोनों को नहीं पता। मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरह देखा है, जब भी मान लो कि मुझे ही क्रोध आ रहा है और सामने वाला पूछता है क्या करेगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, तू चुप हो जा बस, वजह नहीं होता ना। क्योंकि उसका ये जब वो कहते हैं चुप हो जा बस, तो समझ लो कि इसका दरवाजा बंद हो गया। यानी जो थोड़ी बहुत जगह रह गई है वो यदि अब आप चुप नहीं हुए तो वो फूट पड़ेगा, वो दरवाजा बंद कर देगा, फिर उसको नहीं मालूम कि वो क्या करेगा। इसलिए ही क्रोध में क्या होता है कि मर्डर तक हो जाते हैं। यही आपने देखा होगा गुड़गांव में, एक बाप ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया। तो मतलब कहने का है, क्योंकि उसको लिमिट, उसका क्रोध शायद नहीं हो पाया कि ये क्यों रील बनाती है, क्यों वीडियो बनाती है, क्यों ऐसे बनाती है। उस बच्ची को जो इतनी अच्छी इंटेलिजेंट, मतलब गेम्स में भी हर चीज में, और वो अपने उसने कहना मान करके जो कुछ रोकना था रोक भी दिया, फेसबुक बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, बस तो वो समझा रही थी कि ताकि मेरे को ये खोलने के लिए अलाउ कर दे। बस उसका वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका, उसका जो है ना समझा के जा रही थी, उठाई गोली उसके ऊपर बंद मिली हुई थी, उसको जो बंदूक होती छोटी मोटी जो भी उसने मार दिया। क्या है ये? जिस बेटी को इतना पाला पोसा बड़ा किया, तो कोचिंग में ले जाना, वहां ले जाना, वहां ले जाना, अब उसका अकल का दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसने उसे समझाने की कोशिश की, वो समझाने का रिजल्ट ये निकला कि उसने उठाई बंदूक और उठा छुट्टी कर दी। यह क्रोध, ये दम चक्कर, अकल का दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बेटिया ने सोचा होगा मैं समझाती हूँ मान जाएंगे, परंतु वो समझाना भी अक्रोध के ऊपर कोई असर नहीं करता। जिसको बाबा कहते हैं मुरलियों में, गर्म तवे के ऊपर पानी के छींटे डालो वो उड़ जाते, क्योंकि तवा गर्म है। अब आप उसके ऊपर समझाने की भी कोशिश करेंगे, वो उस समझाने को भी जला एकदम उड़ा देते हैं, वो उसे ठंडा नहीं करेगा, वो उस पानी का ही साफा सफाया कर देगा। तो वही उस बच्ची ने किया और उसका ही सफाया हो गया। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को समझाना नहीं, क्रोधी व्यक्ति के सामने खड़ा होना नहीं, ये धर्म चक्कर हो जाता है। दुख देना ये आखिरी गुण, दुख देना ये आखिरी गुण जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देता। जो बच्चे बाप का अपन बहुत करके भी इन आखिरी गुणों का त्याग नहीं करते, बहुत करके भी आखिरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते रहते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, सिर्फ क्या है, हिसाब ही हिसाब है। जो कुछ भी जो कर रहे हैं वो सब अपना हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है संसार के अंदर वो सब क्या हो रहा है, हिसाब ही हिसाब। कुछ भी हो जाए बाबा क्या कहते, आश्री गुणों का त्याग नहीं करेंगे, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है, उस घाटे को भी समझना है, हिसाब ही हिसाब। बाप के साथ धर्मराज भी है, बाप के साथ क्या है, धर्मराज भी है। जी भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचे से ऊंच से ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वे पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नूंद है, 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों का तो शक्ति मिलती है, योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं, बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं वे साइंस घमंडी आदि, इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहां प्रजा पर प्रजा का राज्य नहीं होता, वहां है राजा रानी का राज्य। ऊंच से ऊंच है भगवान, कौन सा बेस्ट होगा, राजा रानी का राज्य अच्छा होगा या प्रजा का प्रजा पर राज्य अच्छा होगा। किसका राज्य अच्छा होगा, प्रजा का प्रजा पर राज्य अच्छा नहीं होता,
नहीं होता भाई।
राजा रानी का भी, इसके लिए मुझे अरस्तु बहुत बहुत वंडरफुल थिंकर लगा, वो पहला राजनीति का पॉलिटिक्स की पुस्तक लिखने वाला पहला व्यक्ति है, उसकी पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स है। उससे पहले किसी ने नहीं लिखा। बाकियों ने वर्णन किया थोड़ा थोड़ा अलग अलग, हमारे वेदों में ले लो, सब सब जगह थोड़ा थोड़ा थोड़ा, परंतु इसने बड़ा सटीक किया। और इसने ये भी कहा कि ये सृष्टि चक्र 6000 साल का है। इस सर्कल को उसने 6000 साल का बताया कि पहले एक राजा होता है, एक राजा बस, और वो राजा बहुत चरित्रवान होता है। जब वो राजा भ्रष्ट हो जाता है, लॉ है उसने भ्रष्ट होना है, जब वो राजा भ्रष्ट हो जाता है, अनार्की आ जाती है, तो शक्ति जो है दो के पास चली जाती, मीन्स मंत्री आ जाता। राजा जब निर्णय करने में, राज्य कार्य संभालने में असमर्थ हो जाता है तो मंत्री भी आ जाता है, दो के हाथ में शासन आ जाता है। अब वो दोनों अच्छा चला रहे होते हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार आ जाता है। जब दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं तो प्रजा के पास राज्य आता, सारे मिलकर के राज्य चलाते हैं, अच्छा चलता है, परंतु वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। जब वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर एक का शासन आता, कोई भी परमानेंट नहीं रहता, और फिर से एक का शासन होगा। वही सर्कल आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो सतो प्रधान थे, सब सुखी थे, राजा प्रजा, राजा सुखी प्रजा भी सुखी। अब राजा भ्रष्ट हुआ तो मंत्री आ गए, वहां मंत्री नहीं होते, तो नेचुरल है कि दोनों भ्रष्ट होने हैं, तो दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर भी दुख बढ़ेगा, तो फिर प्रजा के पास आएगा। ये तीन उसका ये सर्कल बड़ा वंडरफुल सर्कल है। और उसने उस समय जब पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं प्रजातंत्र नहीं थी, उस समय उसने अपनी बुक में लिखा था, डेमोक्रेसी विल बी द वर्स्ट गवर्नमेंट, सबसे गंदी सरकार होगी प्रजातंत्र। मतलब ये फिर एक के पास ये अब जाएगा, अब ये भी प्रजातंत्र भी खत्म होगा, फिर एक लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जिसे स्थापन करने के लिए बाबा आए। याद भी उनको करते हैं, लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से, तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है, कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है, पति मरता है तो या हुसैन मचा दे, ये या हुसैन क्या होता है कौन बताएगा, या हुसैन क्या होता है, हाँ छाती पीटना, सिर पीटना, टांगे पीटना, और अपने आप को पीट पीट करके कोड़े तक मारते हैं। जो हुसैन या हुसैन करते हैं वो तो कोड़े मारते हैं अपने आप को, रोड के ऊपर कोड़े मारते हैं, स्यापा जिसको करना होता है, क्योंकि रोना आ नहीं रहा तो रोने के लिए मार मार के अपने आप को, यदि कोई और लेडीज ना रो रही हो तो उसको जाके पीटते हैं सारी बहनें मिलकर, रो तेरा पति मर गया, रो, उसको रुला के छोड़ते, रोना नहीं चाहती तो उसको रुला के छोड़ते। तुमको कितना श्रृंगार, ये तो पतियों का भी पति है, शिव बाबा तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं, ये ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए, तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं, बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना, बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट आती हैं, काम महाशत्रु है। तो क्रोध भी कोई काम नहीं, क्रोध भी कोई काम शत्रु नहीं। फलानी के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी मेरे से क्यों नहीं पूछा, ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने, देह अभिमान में आने से आखिरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते हैं, करते रहो, तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है देही गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बाप कहते हैं बच्चे, अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, देह अभिमान होने से घाटा पड़ जाता, घाटा होता है। क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो, अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते, ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, जो कुछ भी हो रहा है, हिसाब ही हिसाब का मतलब क्या है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा हिसाब बराबर हो रहा है भाई। बाप के पास पूरा हिसाब रहता है, भक्ति मार्ग में हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, जहां बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। कौन है धर्मराज? धर्मराज कौन है भाई? हम स्वयं ही धर्मराज हैं, जिसने हमें जितना दुख दिया है उसे हम दुख जरूर देंगे, और जिसने हमें जितना सुख दिया है वो हमसे उतना सुख जरूर लेंगे। ये याद रखें, लेना और देना बराबर करना है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। कोई कहे कि मैं सेवा नहीं करूंगा और उसने सेवा करनी है तो वो जरूर करेगा, जरूर करेगा, रुक नहीं सकता सेवा करने से, उसे सेवा करनी ही पड़ेगी, जितनी की थी उतनी ही करनी पड़ेगी, ये नहीं कि ना करे वो। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने ये किया। कब साक्षात्कार होगा? कोई कैमरे लगे हुए हैं, लास्ट में सबको साक्षात्कार होगा। क्या बाबा एक एक आत्मा को वो वीडियो दिखाएगा, देख तूने इस समय ये किया था, ये किया था, ये किया था? कौन बता सकता है कि लास्ट में कैसे साक्षात्कार होगा? हाँ, सेल्फ रियलाइज होगा। हर एक को बाबा जो ये सिर खपाई कर रहा है, कर्मों की गति समझा रहा है, ये कर्मों की गति अंत में उसको रियलाइज कराएगी, मेरे को ये जो भी दे रहा है वो मेरा दिया हुआ है। हर एक को रियलाइज होगा, और उसके बाद उसे रियलाइज नहीं होगा जिसने दुख लेना है, उसे रियलाइज नहीं होगा। वो दुख कैसे लेगा? जिनके दुख का हिसाब बराबर होना है वो अपना हिसाब बराबर करेंगे और घर जाएंगे। जिसको अभी लास्ट मिलेगा वो ये रियलाइज करेगा हिसाब बराबर और घर, क्योंकि उसके बाद उसने दुखी नहीं होना। लास्ट एक्ट के बाद जो उसने लास्ट दुख लेना है, और दुख लेना भी है और एक्सेप्ट करना भी है हिसाब बराबर, ये न्याय है, ये न्याय है। और हर एक को उस एक ही सेकंड के अंदर न्याय की महसूसता होगी और वो परम धाम में होगा। करने वाले को लगेगा मैंने अपना हिसाब बराबर कर लिया, उसको भी लगेगा मेरा हिसाब बराबर हुआ। चलो, क्योंकि सबको घर जाना उसी सेकंड। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहां तो बहुत मार खानी पड़ेगी। हमें क्यों डरा रहा है बाबा भाई? वहां थोड़ी मार खानी पड़ती है, यहां बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना, वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं तो ऐसे राज्य भाग्य के पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, ये भी बाप ने समझाया। ये कोई जुर्नी के ब्राह्मणी मुरली सुनाती है और वो जो है ना ऊंच पद पाएगी, डिपेंड करेगा कि वो कितना उसको अच्छी तरह से समझती है, कितना कोई भी मुरली सुनाने वाला कितना वो खुद अपने आप को सुधारता है, निर्भर इस पर करेगा। ये नहीं कि मुरली सुना रहा है बहुत अच्छा अच्छा बता रहा है तो अब वो ऊंच पद पा लेगा। कितना उसने अपने आप को सुधारा है ये इस बात पर निर्भर करेगा। तो जो मुरली सुनने वाला ज्यादा सुधार ले तो वो ज्यादा नंबर ले सकता है, ऊंच पद पा सकता है। डिपेंड तो है सारा अपनी तकदीर बनाने पर, कि कौन कैसी तकदीर अपनी बनाता है। ये भी बाप ने समझाया। हाँ जी, ये गर्भ जेल की सजा भक्ति मार्ग में बताई गई है कि उल्टा लटका हुआ होता है, वहां पर बदबू होती है, दुख होता है, घुटन होती है, मेरी को नहीं समझ में आता वहां कोई दर्द होता। आप सभी जितने भी हम सारे बैठे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सभी जो हम ये चल रहे हैं वास्तव में हम उल्टे चल रहे हैं। سارے کے سارے. اور کہتے ہم پیدا الٹے ہوئے, پہلے سر باہر آیا, ہم ایکچوئل میں الٹے چل رہے ہیں. جس کے لیے ایک ثبوت دیتا ہوں, ہماری جو آنکھوں کے اندر پکچر بنتی ہے, ہمارے سامنے ایک سویک جتنا چھید ہے, جس میں سے جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اندر جو بند بنتا ہے پیچھے پردے کے اوپر آنکھ کے اندر, وہ الٹا بنتا ہے. اور ہم الٹا دیکھنے کے ابیاسی ہو گئے, ہم الٹا ہی چلتے ہیں, الٹا ہی دیکھتے ہیں, پرنتو ہم اس کو اس پرکار سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے, کیونکہ یہ بات بہت ونڈرفل بات ہے کہ ہماری آنکھ کے اندر بمب الٹا بنتا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد ہم نے اسی پرکار سے دیکھنا شروع کیا, ہمیں جیسا کھڑا کر دیا, اور ہم نے ویسے ہی اپنے آپ کو سمجھ لیا, اور ہم نے اس بمب کو الٹا ہی سمجھنا شروع, الٹے سے ہم سمجھ جاتے ہیں. اور جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ میرے اندر جو آکرتی بن رہی ہے اس کا سر نیچے ہے اور ٹانگے اوپر. یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, سائنس میں پڑھایا جاتا ہے, لینس سے چتر جو بنتا ہے اندر وہ الٹا ہی بنتا ہے. ہم پیدا الٹے ہوتے ہیں کہ ہم چلتے الٹا ہیں, یہ فیصلہ کرتے رہنا. تو مین بات کیا ہے کہ گرب کے اندر کسی بھی پرکار کی جو بھی یدی تکلیف ملنی ہے وہ تکلیف وہاں پر, اب ایک سور پڑا ہے نالے کے اندر, کیچڑ کے اندر, گند کے اندر, اس کو باہر نکالو, صاف پانی کے تالاب میں ڈالو, نہیں, وہاں سے واپس چلا جائے گا اسی کیچڑ میں. ہم آتما ہیں, نوٹ کرو, ہم آتما ہیں, اور آتما بھریکوٹی کے اندر بیٹھی ہے. بھریکوٹی میں اس کے چاروں طرف یہ ماس کے لوتھڑے ہیں نا, پیٹ میں بھی وہی ماس کے لوتھڑے ہیں نا, اس کے لیے الگ سے ایک پارٹ بنا ہوا ہے, ایک جھلی بنی ہوئی ہے, وہ اسی جھلی میں رہتا ہے نا. اب اس جھلی میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو بھی سامان ہے اس کے بچاؤ کے لیے ہے, اس کے بھوجن کے لیے ہے, اور جو کچھ بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ نلی سے جڑا ہوتا ہے, اور وہ نابی سے جڑا ہوتا ہے, وہیں سے بھوجن جاتا ہے, اور وہیں سے اب وہاں پر بھی دو حصے بنے ہوئے ہیں, جانے والا راستہ الگ ہے, آنے والا راستہ الگ. اب مجھے بتاؤ کہ اس کو کہاں پر کیا دکھ مل رہا ہے, یہ تو ہے نہیں کہ وہ باتھ روم کرے گا تو وہیں پڑا رہے گا, لیٹرین کرے گا تو وہیں پڑا رہے گا, اسی میں پڑا ہوا ہے, نہیں, اس کا جو نکلنے کا راستہ اور جانے کا راستہ وہ نابھی ہی ہوتا ہے, وہ اسی سے جڑا ہوا ہے, اسی سے ویسٹ آتا ہے اور ویسٹ ماں کے ساتھ جاتا ہے, اور اسی سے بھوجن جاتا ہے جو بھی ماں نے کھایا. تو بات مجھے بتاؤ کہ وہاں کس پرکار کا دکھ ہے, الٹا لٹکا ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے, آپ میں سے جس نے دیکھا ہوگا کہ ایسی جب کرتے ہیں تو اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ جب کرتے ہیں اس کے اندر کبھی کیسے ہوتا ہے, کبھی کیسے ہوتا ہے, کبھی کیسے ہوتا ہے, وہ گھومتا رہتا ہے. ماں کو محسوس ہو سکتا ہے, بھائیوں کو محسوس نہ ہو, یہاں بہت تیز گھومتا ہے, وہ الٹا کیا لٹتا ہو, جیسے اس کی پوزیشن چاہیے تھک جاتا ہے, ادھر ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے, ویسے ہو جاتا ہے, کیا دکھ ہو رہا ہے اس کو مجھے بتاؤ. آپ آتما کو یدی مستشک میں بیٹھے ہوئے دکھ ہو رہا ہے تو اس کو بھی وہاں دکھ ہوگا. دکھ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہے نا, تاکہ لوگ ڈرے. وہ اندر کھڑا ہو کر کے بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہے, پربھو جی میرے کو باہر نکالو, میں پھر کچھ نہیں کروں گا. کیا وہ پہلے نکلتا ہے؟ ایک سیکنڈ پہلے نہیں نکلتا, ایک سیکنڈ لیٹ نہیں نکلتا. کیا دکھ ملا اس کو؟ باہر آیا کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ اندر کا واتاورن اور باہر کے واتاورن میں فرق تھا. باہر کے واتاورن سے اس کو سینسیٹیشن ہونا چاہیے, اس کو زبردستی رلایا جاتا ہے, کیونکہ ایک دم گرم سے آیا ہے تو اس کو پانی میں بھی ڈالنے کا نیم ہے کہ اس کو پانی میں ڈالو. پانی میں ڈالنے کے دو بار کارن تھے, ایک تو میل صاف ہو جائے گی اور دوسرا उसको लगेगा कि मैं कहां आ गया हूं और वो रोएगा तो उसके सारे अंग खुल जाएंगे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि वो एकदम यदि कोई दरवाजे खुले रह गए नहीं खुल पाए तो वो फिर रह जाते, जाम हो जाते, बंद हो जाते। मतलब किसी भी प्रकार का गर्भ मेरी समझ के मुताबिक कोई भी नहीं मिलता। बाबा ने भी गर्भ महल के गर्भ जेल के लिए कहा कि वहां कष्ट पाता है, क्योंकि दुनिया वाले इस बात को समझते हैं। अब उनके सामने बाबा बैठकर मेरी तरह जो है ना उनको समझाए तो फिर बहुत टाइम लग जाए और सबको समझाना बड़ा मुश्किल होता है एकदम और अलग अलग, क्योंकि बाबा चैप्टर तैयार करके आया है, जितना बताना है उतना बताएंगे और उसके बाद फालतू बताएंगे तो मामला गड़बड़। इसलिए बाबा नए बच्चों को पुराने बच्चों को हर बात को समझाने की युक्ति जानता है और वो जितना साइकोलॉजिस्ट है वो मुझे कोई दिखाई नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता। इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कैसे भी एक्सेप्ट करे, भोले भाव से एक्सेप्ट करे चाहे अच्छी तरह समझ कर एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट तो करना ही होगा कि परमात्मा जैसा साइकोलॉजिस्ट कोई भी नहीं हो सकता। इतनी वंडरफुल तरीके से पढ़ाई पढ़ाता है हर एक, देखो कि भोले से भोला और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने वाला सबको सेटिस्फाई करना चाहता है, कितनी कमाल है उसकी। क्योंकि हमें अच्छी तरह से समझना है जहां है वहीं पर हमारा सुख, जहां है जैसे है उसी में ही खुश रहना, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अपने आप को हर परिस्थिति में संतुष्ट रखने के लिए संतुष्टता वाला गुण जागृत रखना है, उसके लिए ही तो बाबा ने बड़ी वंडरफुल तरीके से पाठ पढ़ाया उन भोले भाले बच्चों को शुरू में जो आए। जहां बिठाओगे जो खिलाओगे जैसे रखोगे, इतना चलाकी से उनको बुद्धू बनाया। और वो जो सोने के थालियों में खाना खाने वाले गोबर के उपले इकट्ठे करके उसमें आलू भून के खाते हैं और बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा आज जो भोजन खाने में मजा आया ना वो आज तक जिंदगी में कभी नहीं आया। छोटे छोटे आलू लेके आते थे और गोबर के जो उपले पड़े होते हैं गोबर कहीं वहां उठा करके उनको भून करके उसमें भी भून करके खा लिया, नमक लगाया और खा लिया। जो सोने की थालियों में खाना खाने वाली बहनें उनको ऐसा बना दिया जहां रखोगे ओ मजा आ गया। बस उन्होंने समझ लिया जो बाबा ने कह दिया है वो सत्य वत्र, तभी तो इतना ऊंच गए। तो जानता है बाबा कि किसने किसने इशारा समझ लेना है और किसके लिए घंटों भाषण करो उसने सिर हिलाते रहना ना, नहीं मैं नहीं सुधर, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं सुधरूंगा, मत सुधरूंगा। ये है पार्ट, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी। कोई तो इशारा सुनते, मैं देख रहा हूं चारों तरफ कि मुझे कोई तो इतने अच्छे अच्छे नए नए आते हैं, इशारा सुनते ही बिल्कुल धारणा पक्की हो गया, आज के बाद प्याज लहसुन खत्म। मैं टीचर को लेके गया था, वहां बाबा से मिलन किया, आया कहता भाई मैं घर में तब घुसूंगा, क्योंकि होटल में खाना खाता था तो शादी हुई नहीं थी तो वही पहले मेरे लिए खाने की व्यवस्था करे, उसको स्टोव गैस स्टोव और ये सारा जो किचन का सामान खरीदवा के दिया, तब जाकर के उसने मुझे आने दिया। और जिसने धारणा करनी है वो बस सुनते ही करेगा और जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा, उसको जा कितना भी समझाते हैं। तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगी, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे, हमें तो डंडा मारने के लिए तैयार रहता है ना, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दासियां बनेंगे। ऐसा पाठ दिखाता है कि देख लो भैया, सोच लो, बाप सन्मुख आते ही हैं, बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो, पास के बच्चे प्रति महावाक्य है बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क को की छी छी दुनिया से जाए सुख था। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है। उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। उन्हों को भी क्या कराया जाता है पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। नॉलेज तो क्या है बहुत सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं परंतु प्रदर्शनी बहुत अच्छी समझा देती हैं। उनको पक्का करा देती है हर बात परंतु योग में है नहीं। देवी गुण भी नहीं। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या अवस्थाएं हैं। बच्चों की दुनिया में बच्चों की दुनिया में कितना दुख है। जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। कौन कह रहा है ये ब्रह्मा बाबा। जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए इंतजार में बैठे हैं। जल्दी चलें सुखदाम। तड़पते रहते जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते समझते हैं। ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है नहीं तो खिट पिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर कभी चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी ये किसने कहा शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों को का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं। देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की है। वे जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना कुछ ना कुछ सहन करना ही है करना ही पड़ेगा। माया मिथु नहीं बनना। माया मिथु नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे कोई कोई हॉस्पिटल में भी सर जाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते, चित्र साथ में ले जाते जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते, जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्योरिटी पीस पीछे प्रॉस्पर्टी। हाँ जी, क्या कैसे कहेंगे?
वो उसका काम कर रहा है, उसका उसका सुख तो कर रहा है, सुख तो करना ही है, तो हम वहन दिल कैसे बनेंगे?
हम अपने आप को ले, कोई मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कोई भी जुल्म मीन्स जुल्म, क्या वो राइट कर रहा है कि रॉन्ग कर रहा है? मैं उसे क्या समझ रहा हूं? हाँ जी, यदि मैं उसे राइट ले रहा हूं तो मैं दुखी नहीं हो सकता। मैं दुखी नहीं आ सकता, फीलिंग में नहीं आ सकता, तो मैंने अपने आप को भी दुखी होने से बचा लिया, उसको भी बचा लिया। ये है अपने ऊपर और सामने वाले के ऊपर रहम करना। जिसको ज्ञान समझ में आ गया है वो ये कर सकता है, कर सकता है, करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, ये उसका पार्ट है। हम मुंह से ना बोले अंदर तो रहता है ना, ये अंदर वाला खत्म करना। क्रोध जो है ये बाहर का धर्म चक्कर दिखाता है। आज बाबा क्रोध पर बात कर रहे हैं। क्रोध ऐसी आग लगा देता है अंदर, कि आप ये देखो कि जैसे ही मैंने महसूस किया कि मेरा घाटा हो गया, बस वहीं वहीं पर ही ऐसा हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होता है कि पूरी बॉडी को जला देता है। जिसके लिए आप छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक ट्रक वाला हमारे गुड़गांव में, मैं एग्जांपल कई बार देता हूं, रिपेयर कराने के लिए गया, मिस्त्री ने कहा 100 रुपया। तो उसने कहा इतना छोटा सा काम था, इसके लिए 100 रुपया क्या मतलब, 50 रुपये ले ले। बस इतना झगड़ा बढ़ गया कि मिस्त्री के हाथ में जो पेचकस था वो पेचकस ड्राइवर को, क्या ट्रक मालिक समझो कुछ भी समझो, उसको लगा दिया। झगड़ा बढ़ता गया ना, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने 2 गाली, उसने 4 गाली, उसने 8 गाली, झगड़ा बढ़ता तो ऐसे, धम चक्कर बनता तो ऐसे ही है। अब क्या हुआ वो 100 रुपए के ऊपर? अब इस घटना को सुनकर वो तो मर गया और वो जेल में चला गया, क्या हुआ? ये धम चक्कर है। आज बाबा सिर्फ क्रोध पर बात कर रहे हैं सारी मुरली में। वो दुखी हुआ ना कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे को 100 रुपए मिलने चाहिए। वो दुखी हो रहा है इतनी सी इतना सा काम किया, इसके लिए 100 रुपए दिए जाए इसको। दोनों की लिमिट, ये घाटा पैसे का महसूसता ही केवल विनाश का कारण बने। इसको आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर सोच सकते, मतलब एक घटना सारी बातों। घर में मैं वही पशु में बात किया, कि झगड़े का कोई भी कारण नहीं, हिसाब ही हिसाब है। नहीं किया जा सकता, हिसाब ही हिसाब है। यही बात बाबा कितनी बार बोल चुके हैं आज तक, अभी हालांकि आधी मुरली भी पूरी नहीं हुई, हिसाब ही हिसाब है। नहीं समझते हो तो भी हिसाब ही हिसाब है, होनी वही है ना जो होके रहनी है। भाई जी हाँ, समझ में भी तो उसी को आएगा ना, हिसाब ही हिसाब है। अब ये कहो कि क्या दोनों, वो जिसका जेल में जाना और उसका मरना गलत है? कोई
कोई गलत नहीं
है, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी इसी को तो बाबा कह रहा है, हिसाब ही हिसाब है। इतनी बार बाबा ने आज ये कह दिया, बस अब वो निश्चिंत हो जाएगा जिसे ये बात गहराई से समझ में आ गई है। अब नहीं समझता इसको, इस बात को गहराई से, तो उसे कोई बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा पढ़ा रहा है फिर भी बाबा कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहता है जो कुछ भी कर रहे हैं राइट कर रहे हैं, जो सुन रहा है वो भी राइट, जो नहीं सुन रहा है वो भी राइट, जो सुधर रहा है वो भी राइट, जो नहीं सुधर रहा है वो भी राइट। इसलिए बाबा निश्चिंत है। हमें टेंशन हो जाती है, मैंने इतना सिर खपाई किया, मैंने इतने बादाम खा के अपना सिर खपा के इनको समझा के, और इनको कुछ समझ में आता ही नहीं, रोले नहीं आता। तो राइट रहोगी दाल से राइट, नो क्वेश्चन। जिसको ये समझ में आ जाता है उसके क्वेश्चन खत्म हो जाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी राइट है, ड्रामा एक्यूरेट है। यही तो बाबा की हलचल में ना आने वाली चाल है, राज है, यही राज है कि बाबा कभी हलचल में नहीं आते। कुछ भी हो जाए कभी हलचल में नहीं, कहीं किसी को कोई दुख नहीं मिल रहा। ये दुख और सुख मेरे सोचने के, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं क्यों दुखी हूं कोई किसी का मर्डर कर रहा है? मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें बचाने का, दोनों को बचाने का प्रयास करूं, दोनों को, एक को नहीं बचाना। यदि मैं एक तरफ हो गया तो मैं बेहद से हद में आ गया। एक को बचाने का संकल्प नहीं आना चाहिए, दोनों को बचाने का संकल्प आना चाहिए। बड़ा अजीब पढ़ाई है हमारी, हमारे ऊपर अज्ञानता का ठप्पा लगा देता है। हमने जैसे ही एक का पक्ष लिया और दूसरे को छोड़ दिया तो ठप्पा लगा दे। साथी वो सारी कहानी घुमा फिरा के शब्द कुछ भी ले आओ मेरे भाई, बात तो यही आएगी ना, साक्षी भी बनेगा तब ना जब उसे ज्ञान क्लियर होगा, ज्ञान का मंथन अच्छा होगा, ज्ञान को धारण करने का पुरुषार्थ किया होगा, बार बार अपने आप को समझाया होगा। शब्द से तो कुछ नहीं बनेगा ना, प्रैक्टिकल होना है। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी, इज फ्यूचर प्रॉस्पर्टी। याद के बल से ही तुम पवित्र बनते हो, बिना याद के तुम पवित्र नहीं बन सकते। फिर है ज्ञान का फल, याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और देवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं 21 जन्मों के लिए, तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को भी बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते, अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते। हाँ जी, ये बात समझनी होगी जो आज बाबा रटवा रहा है। कितनी बार अब तक मैंने देखा, 3-4 बार तो मेरे ख्याल से निकल गया, हो सकता है ज्यादा निकल गया। हिसाब ही हिसाब है, कर लो, वो भी हिसाब ही हिसाब है। हाँ, हिसाब ही हिसाब है। भाई यदि उसने निकलना होगा तो निकलेगा, नहीं निकलना होगा तो निकाल देगा उसको। भाई कितने निकलना है वो तो होगा ना। अब भाई ड्राइवर और मिस्त्री का केस आपके सामने है ना, वो सिंपल सा केस है, कुछ लंबा चौड़ा केस नहीं है। बस अब या तो देखो, यदि नहीं होना होता तो मिस्त्री भी मान लेता यार 40,000 तू 50 दे दे, 75 दे दे। हाँ नहीं लेते कहीं, परंतु बात सारी है ना कि क्यों। वो कह रहा मैं औजार लेके बैठा हूँ, पेज कसना था, ठीक है मैंने एक पेज कसा, पैसे तो मुझे दे दो ना। और हमें लगता है यार 2 नट कसने थे, और या तो तू कस लेता अपने आप घर में। कई बार हुआ, मैंने नोट किया इस बात को कि भाई ये बिल्कुल बस देना है तो देंगे ना, हमें जान से ही जाना है 500 रुपए ना दे करके। हिसाब ही हिसाब है, कठिन तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अपने आप को समझाने की। जब हम समझाएंगे समझेंगे, अपने आप को बैठकर चेक करेंगे, मैंने जो किया वो क्या था, राइट था। हाँ, बिना वजह कुछ होता ही नहीं। वो मेरे को मिला क्यों है, या तो वो सुख देने के लिए मिला या वो दुख देने के लिए मिला या लेने के लिए मिला। मैंने कल देखा बर्तन के अंदर एक वो छोटा सा कीड़ा होता है, वो चल रहा है। अब मैं क्या करूं, अब इतना सोचने का कोई टाइम नहीं। अब जूस बनाना है तो उस पतीले को उठाया और पानी के नीचे किया, साफ कर दिया। उसका समय था, मरना है या जहां पहुंचना है वो पहुंचेगा, जीवन है या नहीं है वो लोग जाने। पर तो जब मैंने किया तो मेरे को लगा आखिर ड्रामा क्यों मेरे पतीले में आया, और क्यों मैंने उठाया और उसको धो दिया। अब उस आत्मा ने कहां जाना होगा, वहां जाएगा ना। میں نے تو پہنچانا تھا اس کو جہاں میرا پارٹ تھا, وہاں میں نے پہنچا دیا. اب میں اس پر بیٹھ کر ٹینشن لوں, چنتا کروں, ڈپریشن میں جاؤں, یا جو ہے نا ڈراما لگا کر چپ چاپ بیٹھتا ہوں. بس دکھ نہیں دینا, ہم نے ایک چھوٹے سے جیو کو بھی کیوں دکھ دے. میں دیکھا اس کو, ایک دم سیدھا اٹھایا اور پتیلے کو پانی کی ٹوٹی کے نیچے کیا, صاف کر دیا. اب پتیلا تو صاف کر دیا, اب اس جیو پر خیال جائے تو کیا کرے. کہنے کا بھاو سمجھنا ہے کہ جب یا تو اس کا بچنا ہوتا تو میں اس کو سوکھے پر بھی ڈال سکتا تھا. اب اس نے بچا یا نہیں بچا وہ مجھے نہیں پتا, پرنتو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ میں اس کو سوکھے میں بھی تو کر سکتا تھا, نہیں کیا تو نہیں کیا. ہونا تو وہی ہے نا, حساب حساب ہے. مطلب میں نے اپنا پارٹ پلے کیا, اس کو میں نے جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا. اب وہ اچھے میں گیا یا برے میں گیا وہ اس کا پارٹ ہے, وہ اچھی جگہ پہنچا یا غلط جگہ پہنچا وہ اس آتما کا پارٹ ہے. میرا جو پارٹ تھا وہ میں نے کر دیا. سوچنا ہوتا تو میں پہلے سوچتا, اب اس سوچنے سے میں کچھ کر نہیں سکتا. اسی لیے کہا ہے کہ بنا وچارے جو کرے سو پاچے پچھتائے. پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں بابا نے کہا پچھتاؤ نہیں, جو ہو گیا ہے نا وہ ہونا تھا, اب آپ آگے کی سدھرو, آگے اٹینشن دو کہ آگے میرے سے کوئی غلطی نہ. اب کیونکہ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے یدی اب آپ سوچ سوچ کر کے اپنا دماغ خراب کرتے ہو. میرے اب وہ فادر نے اپنی بچی کو مار ڈالا, اب یدی وہ ٹینشن میں بیٹھ جائے, اب پارٹوس کا وہ جو کرے گا دو ہی باتیں ہیں. اب وہ کتنے ہیں جن کے بچے مر جاتے ہیں, وہ کتنا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, روزانہ کتنے آتے ہیں. اب وہ سوچے کہ میں نے مار ڈالا اپنی بچی کو, میں نے مار ڈالا اپنی بچی کو, میں نے مار ڈالا. ایسے کئی ماں کے فون آئے کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے مار ڈالا, میں نے جو ہے نا جا کر کے اسے نکلوا دیا, میں نے. اور وہ اتنا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں میرے کارن. اور ایک تو آیا کہ اس نے کہا میں نے جو ہے نا پہلا بچہ جو ہے نا ہم نہیں چاہتے تھے, اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا اب تم بچہ ماں بن ہی نہیں سکتے, میں نے غلطی کی ہے نا, میری غلطی کے کارن ہی میرے ساتھ ایسا ہوا نا. بھائی ہونی تھی. اب یہ باتیں ان کو سمجھانا بڑا محنت, بڑا محنت تو کیا کہوں گا, مطلب کہنے کا کہ ان آتماؤں کا پارٹ ہے, وہ دکھ کیسے لے. اپنے ہاتھ سے ہی اپنے جیون کو نرک بنانا تھا انہوں نے, کیونکہ ماں تو سمجھتی ہے کہ میرے گھر میرا بچہ پیدا نہیں ہوتا تو میں ابھاگن ہوں, ساری دنیا اسی کو دوش دیتی ہے. پرنتو آنے کا پارٹ بھی ہونا چاہیے نا, بچے کا پارٹ نہیں ہے تمہارے پاس آنے کا تو کیسے آئیں گے. میں سوچ نہیں مجھا, حساب ہی آج کی لائن بڑے اچھے ہیں, حساب ہی حساب ہے بس. بابا نے کیا ونڈرفل لائن ڈھونڈ کے لایا, میں پہلی بار آج اس لائن پر نظر گئی ہے, حساب ہی حساب ہے. اور تین چار بار بابا اب تک کہہ چکا ہے, آگے پتہ نہیں کتنی بار کہے گا, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ. جو وکار میں گر پڑتے ہیں یا کرودھ میں آ کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, انیک پرکار کے بچے یہاں بیٹھے ہیں, یہاں سے ریفریش ہو کر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. آج کیا ہو گیا بھائی, مرلی کیسے کریں گے. پھر بھی پشچاتاپ سے کوئی معاف نہیں ہو سکتا. باپ کہتے ہیں کھما اپنے پر آپ ہی کرو, یاد میں رہو. باپ کس کو کھما نہیں کرتے ہیں, یہ تو پڑھائی ہے, باپ پڑھاتے ہیں بچوں کو اپنے پر کرپا کر پڑھنا ہے, مینرز اچھے رکھنے ہیں. بابا براہمنی کو کہتے ہیں رجسٹر لے آؤ, ایک ایک کا سماچار سن کر سمجھانے دی جاتی ہے تو سمجھتے ہیں. براہمنی نے رپورٹ دی ہے اور ہی جاستی ڈس سروس کرنے لگ پڑتے ہیں. بڑی محنت لگتی ہے, مایا بڑی دشمن ہے, بندر سے مندر بننے نہیں دیتی, بندر سے مندر بننے نہیں دیتی. مندر لائق ہونا چاہیے یہاں پر, بندر سے مندر لائق بننے نہیں دیتی ہے. اونچ پد پانے کے بدلے اور ہی بالکل نیچے گر پڑتے ہیں, پھر کبھی اٹھ نہ سکے مر پڑتے ہیں. باپ بچوں کو بار بار سمجھاتے ہیں یہی بڑی اونچی منزل ہے, وشو کا مالک بننا ہے. بڑے آدمی کے بچے بڑی رائلٹی سے چلتے ہیں, کہاں باپ کا باپ کی عزت نہ جائے. کہیں گے تمہارا باپ کتنا اچھا ہے, تم کتنے کپوت ہو, تم اپنے باپ کی عزت گنوا رہے ہو. یہاں تو ہر ایک اپنی عزت گنواتے ہیں, بہت سزائیں کھاتے ہیں, کھانی پڑتی ہیں. بابا وارننگ دیتے ہیں, بابا کیا کرتے ہیں, وارننگ دیتے ہیں, بڑے بڑے خبردار ہو چلے چلو, جیل برس نہ بنو. جیل برس بھی یہاں ہوتے ہیں, ستیوگ میں تو کوئی بھی جیل نہیں ہوتی. پھر بھی پڑھ کر اونچ پد پانا چاہیے, غفلت نہیں کرو, کس کو بھی دکھ مت دو. یدی سوری یاد کی یاترا پر رہو, یاد ہی کام میں آئے گا. پردرشنی بھی مکھیہ بات یہی ہے. بتاؤ, باپ کی یاد سے ہی پاون بنیں گے, پاون بننے سے تو بننے تو سب چاہتے ہیں. یہ ہے ہی پتت دنیا, سرو کی سدگتی کرنا, کرنے تو ایک ہی باپ آتے ہیں, کرائسٹ بدھ آدی, کوئی بھی سدگتی نہیں کر سکتے. پھر برہما کا بھی نام لیتے ہیں, برہما کو بھی سدگتی داتا نہیں کہہ سکتے. جو دیوی دیوتا دھرم کے نمت ہیں, بل دیوی دیوتا دھرم کی آتمائیں کی ستھاپنا تو شیو بابا کرتے ہیں, پھر بھی نام تو ہے نا برہما وشنو شنکر. برہما دوارا ستھاپنا, شنکر دوارا وناش, وشنو دوارا پالنا. تری مورتی برہما کہہ دیتے ہیں, باپ کہتے ہیں یہ بھی گرو نہیں. گرو تو ایک ہی ہے, ان کے دوارا تم روحانی گرو بنتے ہو. باقی یہ دھرم ستھاپک ہیں, دھرم ستھاپک کو سدگتی داتا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بڑی ڈیپ باتیں ہیں سمجھنے کی. انیہ دھرم ستھاپک تو صرف دھرم ستھاپنا کرتے ہیں, جس کے پچھاڑی سب آ جاتے ہیں. وہ کوئی سب کو واپس لے نہیں جا سکتے, ان کو تو پنرجنم میں آنا ہی ہے. سب کے لیے یہ سمجھانی ہے, ایک بھی گرو سدگتی کے لیے نہیں. باپ سمجھاتے ہیں, گرو پتت پاون ایک ہی ہے, وہی سرو کا سدگتی داتا ہے, لبریٹر ہے. بتانا چاہیے ہمارا گرو ایک ہی ہے جو سدگتی دیتے ہیں, شانتی دھام سکھ دھام لے جاتے ہیں. ستیوگ آدی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کس کو کس کا راجے تھا, چتر تو دکھائیں گے نا, بھارت واسی ہی مانیں گے. دیوتاؤں کے پجاری جھٹ مانیں گے کہ برابر یہ تو سرگ کے مالک ہیں, سرگ میں ان کا راجے تھا. باقی سب آتمائیں کہاں تھی, ضرور کہیں گے نراکاری دنیا میں تھی. یہ بھی تم ابھی سمجھتے ہو, پہلے کچھ بھی پتا نہیں تھا. ابھی تمہاری بدھی میں چکر پھرتا رہتا ہے. برابر 5000 ورش پہلے بھارت میں ان کا راجیہ تھا, جب جان کی پرالبدھ پوری ہوتی ہے. تو پھر بھکتی مارگ شروع ہوتا ہے, پھر چاہیے پرانی دنیا سے ویراگیہ. بس ابھی ہم نئی دنیا میں جائیں گے, پرانی دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے. وہاں پتی بچے آدی سب ایسے ملیں گے. بے حد کا باپ تو ہم کو وشو کا مالک بناتے, جو وشو کا مالک بننے والے بچے ہیں ان کے خیالات بہت اونچے اور چلن بڑی رائل ہوتی. بھوجن بھی بہت کم, جاتی حبت نہیں ہونی چاہیے. یاد میں رہنے والے کو کا بھوجن بھی بہت سوکشم ہوگا. بہتوں کو کھانے میں بھی بدھی چلی جاتی, تم بچوں کو تو خوشی ہے وشو کا مالک بننے کی, کوئی کہا جاتا ہے خوشی جیسی خوراک میں. ایسی خوشی میں سدیو رہو تو کھان پان بھی بہت تھوڑا ہو جائے, بہت کھانے سے بھاری ہو جاتے. پھر جھٹکا آدی کھاتے ہیں, پھر کہتے ہیں بابا نیند آتی ہے. حساب سدیو ایک رس ہونا چاہیے. ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, कोई चीज अच्छी बने उसको ज्यादा खाओ, ये नहीं। अच्छा मीठे मीठे शिथिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार कर, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, हम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना, हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है, डिस सर्विस करके अपने आप को श्रापित नहीं करना है। अपने चालाक बड़े ऊंचे रॉयल रखने हैं, रहम दिल बन सर्विस का पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हबस लालच को छोड़ देना है। वरदान ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भाव, स्वयं को जो है जैसा है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ी बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मन मत और पर मत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्ट नहीं। ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष है। स्लोगन, सच्चा तपस्वी वे है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त वर्तमान भविष्य का दर्पण, वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।